ओम शांति। मेरे शरीर का नाम आरती है। मुझे 50 साल से ऊपर इस ईश्वरीय ज्ञान में हो गए हैं। मेरे लौकिक पिताजी लेफ्टिनेंट कमांडर थे और वो भी इस ज्ञान में थे। मेरे लौकिक ब्रदर, मेरी बड़ी सिस्टर और छोटी बहन जो कि इस समय सेंटर पर रहती है, और माता जी ने ये ज्ञान हम आत्माओं को दिया। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और लाल किले में रहते थे। उस समय फादर रिक्रूटिंग ऑफिस के अंदर रिक्रूटिंग ऑफिसर थे और वो भी वहीं रहते थे, और हमको ज्ञान हमारी बुआ से मिला जो गुड़गांव में रहती थी। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, माताजी पिताजी दोनों ने शरीर छोड़ दिया है, और पिताजी जो हैं फिर बाद में जब वाइन के डिस्ट्रीब्यूटर बने तब हमको ये ज्ञान मिला। और उस ज्ञान में जब बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे शराब पिलाना पाप है, तो लौकिक पिताजी ने वो धंधा बंद कर दिया, और बंद करने के बाद बाबा से राय लेकर कार्य किया, और उसके बाद हम भी बाबा को पत्र लिखते थे, और बाबा को देखते ही हमको ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्तित्व हमने इस सृष्टि पर आज तक नहीं देखा। मैंने इतनी किताबें पढ़ी थी धार्मिक नेताओं के बारे में, साधु महात्माओं के बारे में, उन पुस्तकों में बहुत से उनके गुणों के वर्णन थे, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा के गुण थे वो बहुत ही अलौकिक थे, क्योंकि वो ऐसी हस्ती थी जिसके तन में स्वयं परम पिता परमात्मा का अवतरण हुआ था, और वो अवतरण इतना महान था, इतना अलौकिक था, इतना समर्पित करने वाला था कि बाबा की दृष्टि पड़ते ही कोई भी व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो वो भी पिघल जाता था। जब हम पहली दफे बाबा से मिले, बाबा से मिलने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमें संपूर्ण प्राप्ति हो गई है। और अपनी पढ़ाई पढ़ते हुए, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ती थी, जहां पर परमात्मा का ज्ञान मुझे मिला, और उस छोटी सी एज में ही मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अपना जीवन समर्पित करना है। और उस लक्ष्य को लेकर जो पहली ट्रेनिंग हुई माउंट आबू में, उस ट्रेनिंग के अंदर हम आए पिताश्री के अव्यक्त होने के बाद। पिताश्री जब अव्यक्त नहीं हुए थे तब हम तीन दफे बाबा के साथ 15 दिन रहे हैं, और उस समय बाबा ने हमको हरेक प्रकार की अनुभूति कराई। योग का अनुभव भी बाबा ने कराया। सुबह 3:30 बजे उठकर जब हम बाबा से योग करते थे तो शरीर में ऐसी स्फूर्ति आ जाती थी, बुद्धि में दिव्यता कायम हो जाती थी, और मन एकदम शांत हो जाता था। ऐसे लगता था कि हम उड़ रहे हैं, और उड़ते उड़ते किसी अलौकिक दुनिया में पहुंच गए हैं। और उस अलौकिक दुनिया का अनुभव बाबा ने बहुत दफे कराया। आज हमारे जीवन में जो नैतिकता, अनुशासन और जो जितने भी मूल्य दैवी गुण आए हैं वो सब इस संस्था में आने के बाद आए हैं। संस्था हमें दिव्यता धारण करना सिखाती है, रूहानियत भर देती है हमारे अंदर, दृष्टि हमारी पवित्र बन जाती है, मन हमारा शुद्ध हो जाता है। नहीं तो देखिए मन में कितने तरह के विचार चलते हैं, और मन के विचार ही मनुष्य के कर्मों में आते हैं, और कर्मों के बाद ही वो कोई भी पाप कर्म करता है या अच्छा कर्म करता है। इसीलिए मन को शांत करने की विधि यहां पता चली, बुद्धि को स्वच्छ बनाने की विधि यहां पता चली, चित्त को एकाग्र करने की स्थिति यहां पता चली। और जब हम आत्माएं राजयोग का अभ्यास करती हैं, सबसे पहला निश्चय तो हमको ये हुआ कि ज्योति बिंदु परमात्मा शिव इस सृष्टि पर ब्रह्मा की भ्रिकुटी के बीच में बैठकर हम आत्माओं को ज्ञान सुना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, और उस राजयोग के माध्यम से हम आत्माओं का जीवन पवित्र और योगी बनता जाता है। राजयोग हमें कर्म इंद्रियों पर विजय करना सिखाता है। हमारी कर्म इंद्रियां हमें विचलित करती हैं। दृष्टि जब चलायमान होती है तो मन भी विचलित होता है। दुनिया के आकर्षण हमें अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन राजयोग का अभ्यास हमें सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक परमात्मा में स्थित करता है। और जब हम उस स्थिति में स्थित होते हैं तभी हमें प्राप्ति होती है और हम एकाग्रता को प्राप्त करते हैं। गति सदगति की प्राप्ति भी इस राजयोग के माध्यम से होती है। जब इस ज्ञान को हमने सुना, सुनने के बाद अपना जीवन इस सेंटर पर दिया, दादियों के संपर्क में आए, दादी मन प्रकाशमणि जी, मनमोहिनी दीदी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, जितनी भी दादियां थी उनके संपर्क में आने से, और मुख्य भाई, उनका जीवन इतना श्रेष्ठ जब हमने देखा तो हमें ऐसा लगा कि हम किसी स्वर्ग की दुनिया में आ गए हैं। और वो स्वर्ग की दुनिया कहीं और नहीं, यही माउंट आबू में है, जिसमें अनेक भाई बहन अपना जीवन देकर कितना अपने को खुशी से भर रहे हैं। क्योंकि अलौकिक जीवन से खुशी भी अलौकिक आ जाती है। हम आत्माएं इस कलयुगी दुनिया के अंदर, कलह की दुनिया में, कल पुरुषों की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में फंसे हुए हैं, और इस दुनिया से निकलकर हमें एक अलौकिक दुनिया में जाना है, सत्युगी दुनिया में, जिसकी स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा, पिता श्री ब्रह्मा के माध्यम से कर रहे हैं, जो हमारे अलौकिक पिता हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपने जीवन को, अपने तन मन धन को संपूर्ण रीति से इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, भगवान के अर्पित हो गए, तो जरूरी बात है कि उस व्यक्तित्व को देखकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित कर देगा। और बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि बच्चे शुद्ध अन्न खाना चाहिए, सात्विक भोजन जिसे कहा जाता है, कोई भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करो, चाहे शराब है, सिगरेट है, तमाकू है, व्यसन इसके साथ साथ मीट, अंडा, शराब, सिगरेट सब चीज हमको छोड़कर सात्विक भोजन करना चाहिए। जितना हम सात्विक भोजन करेंगे उतना हम परमात्मा के साथ सहज ही योग कर सकेंगे और साथ साथ संग भी हमारा श्रेष्ठ हो, परमात्मा के साथ का संग हो। किसी भी अशुद्ध संग को अगर हम करते हैं तो हम डूब जाएंगे इस भव सागर के अंदर। इस भव सागर से अगर हमको तैर कर बाहर जाना है तो हमें अच्छा संग करना पड़ेगा, दैवी गुणों की धारणा करनी चाहिए, तभी हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद को प्राप्त करेंगे। क्योंकि शिव बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया है कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, और लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ भी हमको इतना ही श्रेष्ठ, इतना ही महान करना पड़ेगा। आज हमें किसी भी बात का संकल्प नहीं था बचपन में कि हमें कोई आश्रम में जाना है, लेकिन इस आश्रम की गतिविधियों को देखकर और सबसे मुख्य तो बाबा को जब देखा तो ऐसा लगा कि हमें बाबा के साथ ही रहना है। और अभी भी हम भगवान को अपने साथ महसूस करते हैं। जब दिल्ली से माउंट आबू गए ट्रेनिंग ली, उसके बाद डायरेक्ट इंदौर आना हुआ, और इंदौर में तो उस समय हम बहुत छोटे से थे, लेकिन छोटे होते भी भगवान को जिस आत्मा से कार्य कराना होता है वो अपने आप ही उस आत्मा को आगे बढ़ा देती है। फिर मधुबन में आना जाना होता रहा, अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात होती रही, और फिर आगे भी बाबा ने ही बढ़ाया, भगवान ने ही बढ़ाया, जोन इंचार्ज बनाया, उसके अंतर्गत 200 सेवा केंद्र और 400 बहनें इस समय हमारे कनेक्शन में हैं। जोन इंचार्ज बनाकर बाबा ने बहुत से विशेष कार्य कराए और साथ में ये जिम्मेवारी भी दी कि विश्व के परिवर्तन में तुमको इस गोवर्धन पर्वत को उंगली लगाकर कार्य करना है। और वही भगवान का कार्य अभी हम कर रहे हैं और अन्य आत्माओं को भी ईश्वरीय संदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ बनने का संकल्प दे रहे हैं।
भगवान दास राठी, शंकरलाल जी राठी पिताजी का नाम है। हम मूलतः जिला इंदौर के रहने वाले हैं। प्रोफेशन से आई एम द हाईकोर्ट जज जस्टिस बी डी राठी कहलाता हूं। मेरा विवाह 1977 में मेरे पास बैठी श्रीमती आशा राठी के साथ हुआ। उसके बाद हमने लीगल प्रोफेशन शुरू करा, इंदौर हाईकोर्ट में वकालत प्रारंभ की। दो पुत्र मेरे हैं, अब उनकी दोनों के विवाह भी हुए और उनकी भी संतान है, भरा पूरा परिवार है। हम 1977 में जब वकालत के प्रोफेशन में आए इंदौर में, तब हम उस समय नई युवा पीढ़ी के जो एडवोकेट्स थे उसका नेतृत्व किया करते थे, और उसी समय एक प्रोग्राम रखा और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर वाई वी चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने हमने यहाँ आमंत्रित किया इंदौर में मुख्य अतिथि के रूप में। एक कार्यक्रम रखा था हमने युवा अधिवक्ताओं ने, और तभी हमको पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्था का निमंत्रण प्राप्त हुआ कि आप चंद्रचूड़ साहब को लेकर यहाँ आइए। तब हम महात्मा गांधी मार्ग पर इंदौर में तोपखाना में, यहाँ एक ब्रह्मा कुमारी संस्था का सेंटर हुआ करता था, वहां पर माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़ साहब को लेकर गए, वहां प्रदर्शनी समझी, और उस समय पहली बार हमको ब्रह्मा कुमारी संस्था की फिलॉसफी का पता लगा कि एक बहुत उच्च क्वालिटी की आध्यात्मिक शिक्षा का यहाँ ठीक से अध्ययन कराया जाता है ताकि जीवन मानवीय मूल्यों से मानवीय गुणों से भरपूर होता रहे। बिलासपुर में मैं उस समय क्लास टू के रूप में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के रूप में पदस्थ था, तब ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक एग्जीबिशन वहाँ मानस भवन करके और जो वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कम्युनिटी हॉल है वहाँ एग्जीबिशन लगाई गई थी और लिखा था कि इस समय विश्व की घड़ी में क्या वजह है, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारी संस्था की एग्जीबिशन को देखिए। हम और भी न्यायाधीश थे तो सभी लोग एक दिन शाम को एग्जीबिशन देखने गए और वहाँ पूरा अच्छे से हमने अध्ययन किया कि इनकी बड़ी जो फिलॉसफी थी उसमें क्या सार है। फिर इनका एक वीकली कोर्स था, उसको भी हम लोगों ने किया और वीकली कोर्स करने के बाद ऐसा लगा कि हमको अपनी दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करना चाहिए और उसी के चलते हम प्रतिदिन प्रातःकाल इनकी जो वहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम था वहाँ क्लास करने जाते थे। क्लास में दो पीरियड होते थे, एक तो मेडिटेशन जो प्रैक्टिकल हुआ करता था और दूसरा थ्योरी जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन का कार्यक्रम हुआ करता था। धीरे धीरे वो प्रवचन सुनना और मेडिटेशन के द्वारा उनको आत्मसात करना, इस प्रक्रिया से हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी थी वो हमने अनुभव करा कि समाप्त होती गई और सकारात्मक विचारों ने उस नेगेटिव विचारधारा को समाप्त करके अपना स्थान ले लिया। और उसके कारण जो सबसे बड़ा फायदा मैं महसूस करता हूँ और आज तक उसको रियलाइज करते हुए हमेशा धन्यवाद देता हूँ संस्था को कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो एकाग्रता की शक्ति है उसमें बहुत मात्रा में बढ़ोतरी हुई। और इसलिए विशेष कि हम जो न्यायाधीश लोग हैं हमको एकाग्रता की शक्ति का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जितना कंसंट्रेट होंगे तब हम जब एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं बहस सुनते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाली आत्मा जानबूझ के हमको इरिटेट करता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारे पास एकाग्रता की शक्ति है तब हम शांति से उनको सुन करके और बाकी सारी नेगेटिविटी को अवॉइड करते हुए और क्या वास्तविक सत्य है इस डिस्प्यूट में दोनों पार्टी के बीच उसको निकाल सकते हैं। तो इनके मेडिटेशन से श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन से जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन मिला उसने मुझे सिविल जज से लेकर के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के पद तक ले गए। और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर ये संस्था का मेडिटेशन नहीं होता और वो जो पावर हमें मिली वो नहीं होती तो ये भी संभावनाएं थी कि इस आज की जो विकारी और कलियुग की दुनिया है जहां आप सभी जानते हैं कि चारों तरफ कैसी नेगेटिविटी फैली है, हो सकता है कहीं मार्ग से भटक जाते। तो उसके बाद हमारा गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा चलता रहा। गृहस्थी में इस मेडिटेशन और गीता के प्रवचन के द्वारा प्योरिटी के थॉट्स भी हमारे बच्चों में हम में वो कंटिन्यूस प्रवाहित होते रहे। उसके कारण हर क्षेत्र में हमने हमारे बच्चों ने सब ने बहुत मान सम्मान भी प्राप्त किया और लोग ये जानने लगे कि भाई साहब या इनके परिवार के लोगों के साथ यदि कोई भी प्रकार का संपर्क संबंध रखा जाए तो इसमें कोई हर्जा नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक अलग से छवि जो बनी वो मैं उसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का धन्यवाद करता हूँ।
शरीर का नाम आशा राठी, एजुकेशन बीए, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और हम लोग भोजन भी बनाते हैं बाबा की याद में, बाबा को प्यार से भोग लगाते हैं तो उसमें खाने में अलग ही आनंद आता है और मन में बहुत शांति रहती है। जब हम बाबा से मिलने जाते हैं तो सभी दादियों से बहुत प्यार से मिलते हैं और दादियां भी हमसे बहुत प्यार से मिलती हैं, तो बार बार इच्छा होती है कि बार बार दादी से मिले
और दादी के पास जाएं और उनसे अनुभव भी सुने बाबा के। जब भी हम जाते हैं बाबा से मिलने, तब आबू पर्वत पर भी जाते हैं, वहां पर भी बाबा के कमरे में जाकर योग लगाते हैं, तो वहां पे बहुत शांति का अनुभव होता है। और हम लोग घर पर भी बहुत सभी बच्चों के साथ और भरा पूरा परिवार है हमारा भी, तो उन सबके साथ हम बाबा की बातें शेयर करते हैं और वह भी बहुत खुश होते हैं। और जब भी हमसे मिलने कोई घर पर आता है तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, घर पर ऐसा लगता है उनको कि भाई कहाँ पर आ गए हम, बहुत अच्छे। तो बाबा का अनुभव हम उन लोगों को भी सुनाते हैं तो वो बहुत उत्साहित होते हैं कि नहीं, हम भी जाकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर ज्ञान सुनेंगे और क्लास भी करेंगे, तब और अच्छा लगेगा।
मेरा नाम रजनी तोदी है। मेरी क्वालिफिकेशन बीई इलेक्ट्रॉनिक्स में है। मैं इंदौर शहर में पली बड़ी, लेकिन शादी के बाद मैं मुंबई चली गई। मुंबई में कुछ ही समय रही, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका मूव हो गई। अमेरिकन लाइफस्टाइल से धीरे धीरे मुझ पे स्ट्रेस रहने लगा, वहाँ सब कुछ अपने आप करना होता है। मेरे दोनों बच्चे भी छोटे थे उस वक्त और मुझे बच्चों की भी इमोशनली चिंता रहने लगी। एज सच मेरा नेचर इमोशनली है, तो मैं बच्चों की हर छोटी बड़ी बात की चिंता करने लगी और मुझे स्ट्रेस रहने लगा। मैं बच्चों की हर बात कंट्रोल करती थी उस वक्त, मुझे लगता था मैं ही सही हूँ और बच्चों के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। और इस वजह से मेरा थोड़ा मेरे हस्बैंड से भी कॉन्फ्लिक्ट रहने लगा। ये ऑनगोइंग स्ट्रेस और ऑनगोइंग चिंता के कारण मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट आने लगा। मैं स्कूल में आई वॉज एन एथलीट, मैं बास्केटबॉल खेलती थी और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती थी, लेकिन स्ट्रेस और चिंता के कारण मेरी हेल्थ गिरने लगी और मुझे वीकनेस रहने लगी। मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती थी। मैं बहुत परेशान सी रहने लगी, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट, बच्चों की चिंता, हेल्थ की भी तकलीफ। ऐसे समय में फॉर्चुनेटली मुझे बाबा का ज्ञान मिला। शिव बाबा का ज्ञान मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगा। मुझे ज्ञान में कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं लगी, तो मैंने ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया क्योंकि मैं अपनी तकलीफों से बाहर आना चाहती थी। सबसे पहले मैंने ज्ञान का लेट गो वाला पॉइंट अपनाया। मुझे ये समझ में आया कि मेरे बच्चों की अपनी डेस्टिनी है, मेरे आसपास जो भी है सबकी अपनी डेस्टिनी है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कंट्रोल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लेट गो करना शुरू किया। जितना मैंने लेट गो किया उतना मुझे भी रिलीफ मिला और मेरे आसपास भी सब लोगों को रिलीफ मिला। मेरे हस्बैंड से भी मेरा रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगा। मैं जो मेरी फिजिकल हेल्थ थी वो मेडिटेशन करने से, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन मेरा इनर स्ट्रेंथ, मेरा इनर पीस बढ़ा और मैं खुश रहने लगी। तो उससे मेरी हेल्थ पे भी अच्छा असर हुआ। पहले मैं छोटी मोटी डस्टिंग भी करती थी तो मुझे थकान होती थी। मेरा बहुत मन होता कि बाबा के कार्य में सेवा दूं। मेडिटेशन से और ज्ञान से धीरे धीरे मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई कि मैं अब बाबा के घर में ड्राइविंग की, सफाई की सेवा अमेरिका में दे पाती हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे रिलेशनशिप्स मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ बहुत इम्प्रूव हो गए। सब खुश रहने लगे हम लोग। एक्चुअली प्रैक्टिकली माय लाइफ बिकेम वेरी वेरी हैप्पी। एंड मुझे इस नॉलेज से सिक्योरिटी मिली कि चाहे कुछ भी हो, मेरे भगवान, मेरे शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मेरा ध्यान रखेंगे। और उस वजह से मुझे बहुत एक सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, अभी भी है और हमेशा रहेगी। और मुझे चिंता अब खत्म सी हो गई है कि बाबा सब देख रहे हैं, बाबा सब संभाल रहे हैं। और मैं बस बाबा के साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ बाबा के ज्ञान में। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। इससे मेरे घर का वातावरण शांत रहने लगा। मुझे तो शांति लगती ही थी, मेरे परिवार के सदस्यों को भी, मेंबर्स को भी पीसफुल फील होता। लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स मेरे घर में आते या मेरा भाई जो मेरे पड़ोस में ही रहता वो मेरे घर में आता और वो मुझे कहता था कि, मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि आपके घर में आने से एक शांति महसूस होती है, आप पहले जो थे उससे बहुत अलग लगते हो, आप बहुत ऐसा महसूस होता है कि आप स्ट्रांग हो गए हो, वरी फ्री हो गए हो, अभी चिंता नहीं करते। उन सभी ने मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन देखा और वो बहुत खुश होते हैं इस बात से। और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसा आपको क्या मिला कि जिस वजह से आपका इतना सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और फिर मैं उन्हें बाबा के ज्ञान के बारे में बताती हूँ। इस तरह से मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बाबा का ज्ञान लिया और मेरे माता पिता ने भी मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद ही इस ज्ञान को लेने का डिसीजन लिया और कोर्स किया।